पुस्तक छठवी, लेक्चर नंबर 19। ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्, णमियूणणन्तजिणम्, अनन्तनाणेन दिट्ठसौवट्ठम्, कम्मपदे सविहत्तिम् वोच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठवीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 137 पर आ गए, 137। यहाँ क्षपित कर्मांशिक की बात चल रही है और मिथ्यात्व का जघन्य द्रव्य किसके होता है, प्रदेश सत्कर्म, उसकी बात चल रही थी। उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 137 पर विशेषार्थ पढ़ेंगे, जो पहले पढ़ा है उसी का ये विशेषार्थ बता रहे हैं। पहले जो मिथ्यात्व का जघन्य द्रव्य बतला आए हैं, कब देखा था हमने, क्षपित कर्मांशिक रूप से आया है, कर्म स्थिति प्रमाण सूक्ष्म निगोद में रहे और वहां से त्रस में आया है, और त्रस में उसने बहुत बार, अनेक बार संयमा संयम सम्यक तो संयम आदि धारण किया है, चार बार कषायों को उपशमाया है। ऐसे जीव को यहाँ लिया और उसके बाद जब वो दर्शन मुनि की क्षपणा करता है, तो जब अंतिम निषेक बाकी रहता है मिथ्यात्व का, उस समय उसका जघन्य द्रव्य है, उसी की बात यहाँ बता रहे विशेषार्थ में। पहले जो मिथ्यात्व का जघन्य द्रव्य बतलाए है, उसमें प्रकृति गोपुच्छा और विकृति गोपुच्छा, इस तरह दोनों प्रकार की गोपुच्छाएं पाई जाती है। जो जघन्य द्रव्य बतलाया है उसमें, अभी इसका अर्थ बतलाएंगे, प्रकृति गोपुच्छा क्या है और विकृति गोपुच्छा क्या है, तो दोनों प्रकार की गोपुच्छाएं पाई जाती है, यानी दोनों ही प्रकार के जो निषेक कहो वो पाए जाते हैं। गोपुच्छा का अर्थ गाय की पूंछ है, जैसे गाय की पूंछ उत्तरोत्तर पतली होती जाती है, वैसे ही कर्म निषेक एक एक गुणहानि के प्रति उत्तरोत्तर एक एक चय कम होने से उनकी रचना का आकार भी गाय की पूंछ के समान हो जाता है। ये हमने देखा था, नीचे ज्यादा और ऊपर टेपरिंग होता है। जो निषेक रचना स्वाभाविक होती है उसे प्रकृति गोपुच्छा कहते हैं, ये नेचुरल जो है उसको प्रकृति गोपुच्छा कहा। स्वाभाविक का अर्थ है बंद के समय जो निषेक रचना हुई है, प्रायः वह अपकर्षण या उत्कर्षण द्वारा जो कर्म परमाणु नीचे ऊपर होते रहते हैं, या संक्रमण द्वारा जो कर्म पर प्रकृति रूप होते हैं, उनसे प्रकृति गोपुच्छा की हानि नहीं मानी गई है। ये जो निषेक बने हैं उसमें से कुछ परमाणु अपकर्षित होते हैं, कुछ उत्कर्षित होते हैं, कुछ पर रूप संक्रमित होते हैं, परंतु उसके कारण जो मूल निषेक है उसकी हानि नहीं होती, वो बने रहते हैं, क्योंकि उनसे ऐसा होने का कोई क्रम है या वे ऐसे किसी हद तक ही होते हैं। अतः इससे प्रकृति गोपुच्छा में उल्लेखनीय विकृति नहीं पैदा होती है, यानी थोड़े से चले जाए अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण से तो प्रकृति जो निषेक है वो वैसा ही बना रहता है, तथा जो निषेक रचना क्रमहानि और क्रमवृद्धि रूप न रहकर नीचे से ऊपर देखो क्रम हानि है और ऊपर से नीचे क्रम वृद्धि, ऐसे नहीं रहते हुए व्यतिक्रम को प्राप्त हो जाती है। व्यतिक्रम का अर्थ क्या है, ये जो एक सरीखा जो है वो तो कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा हो जाता है, उसको कहेंगे विकृति गोपुच्छा। क्रम नहीं रहना, क्रम छोड़कर होना, वो व्यतिक्रम। एक होता है अनुक्रम से या क्रम से, और एक होता है व्यतिक्रम से, क्रम छोड़कर जो हो जाता है। यह विकृति गोपुच्छा स्थिति कांडक घात से प्राप्त होती है। स्थिति कांडक घात होता है, उसके एक एक फाली नीचे गिरती है तो नीचे भी परमाणु ज्यादा है और वो जो अंतिम फाली रहेगी वो भी विकृति गोपुच्छा का ही ना, भी उसका भी नाश होने वाला है। अब प्रकृति में यह देखना है कि प्रकृति गोपुच्छा का प्रमाण कितना है। यहाँ जघन्य प्रदेश सत्कर्म का प्रकरण है, यानी इसमें प्रकृति गोपुच्छा भी है और विकृति गोपुच्छा भी है, ऐसा कहे ना। दोनों प्रकार की गोपुच्छाएं पाई जाती है जघन्य द्रव्य में, पहला वाक्य जो अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ जघन्य प्रदेश सत्कर्म का प्रकरण है, इसलिए जो जीव सूक्ष्म एकेंद्रियों में कर्म स्थिति प्रमाण काल तक घूम लिया है, उस एकेंद्रिय का कर्म स्थिति के अंतिम समय में प्राप्त होने वाला द्रव्य लोभ, यानी वो सूक्ष्म निगोद में रहने का वहां का अंतिम समय वाला द्रव्य, अंतिम उसके निषेक का द्रव्य, और इसमें अंतर्मूल से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण का भागहार का भाग दो। इससे एकेंद्रिय के संचित द्रव्य में से उत्कर्षित द्रव्य का प्रमाण आ जाता है। अपकर्षण में और उत्कर्षण में भागहार उतना ही होता है। नहीं, भागहार बड़ा हो जाएगा, अंतर्मूल से भाजित भागहार छोटा हो। हाँ, तो अंतिम समय में प्राप्त होने वाला द्रव्य लो और इसमें अंतर्मूल से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागहार का भाग दो, क्योंकि वहां द्रव्य भी कम है ना, तो भागहार भी छोटा कर दिया। इससे एकेंद्रिय के संचित द्रव्य में से उत्कर्षित द्रव्य का प्रमाण आ जाता है। एकेंद्रिय में जो वहां पड़े हैं परमाणु, उसमें से उत्कर्षण कितने का होता है उसका प्रमाण आ गया। क्या होता है, अभी एकेंद्रिय में से त्रस में आया जीव, यहाँ क्या लिखा है देखो, फिर एक लाइन ऊपर पढ़ते हैं। यहाँ जघन्य प्रदेश सत्कर्म का प्रकरण है, इसलिए जो जीव सूक्ष्म एकेंद्रियों में कर्म स्थिति प्रमाण काल तक घूम लिया है, उस एकेंद्रिय का कर्म स्थिति के अंतिम समय में प्राप्त होने वाला द्रव्य लो और इसमें अंतर्मूल से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागहार का भाग दो। इससे एकेंद्रिय के संचित द्रव्य में से उत्कर्षित द्रव्य का प्रमाण आ जाता है। एकेंद्रिय में संचित द्रव्य का उसका अर्थ क्या है, देखो जो पहले कर्म स्थिति काल पहले बंधा वो तो उसका अंतिम निषेक खिर जाएगा, परंतु उसके बाद उसने कितना ही जो कुछ बांधा है या पड़ा है अंदर, उसमें अपनी अपनी शक्ति स्थिति पड़ी है। अब एकेंद्रिय में से त्रस में आता है तो वहां तो अधिक बंध होता है, तो जहां अधिक बंध है वहां उत्कर्षण भी होगा। तो एकेंद्रियों में जो संचित द्रव्य पड़ा है उसने नया बंध किया, वो तो सागर वाला किया होगा, परंतु पहले से पड़ा है ना अंदर कुछ, वो द्रव्य जो पड़ा है उस एकेंद्रिय के लास्ट समय में जो संचित द्रव्य है उसकी बात है। नए नए बंध वाले वो एक सागर से ज्यादा नहीं है, परंतु पंचेंद्रिय में बांध कर आया है और जिसके पल्ले के असंख्यातवे भाग में वो सागर जितना करता है, उसने स्थिति कांडक करते करते इतना घटाया है। कर्म स्थिति का पहला निषेक उसका अंतिम समय चला गया, बाकी कुछ तो होगी कि नहीं वहां पर। हाँ, उतने तो वहां निषेक है, वहां उन्होंने स्थिति घटा घटाते इतनी की है, परंतु जो पंचेंद्रिय में से आया है, पंचेंद्रिय का पूरा एक समय प्रबदलो ना, उसके पश्चात भी उसने कुछ बांधे होगी कि नहीं होने? हाँ, एक शक्ति एक सागर की है। हाँ, संचित द्रव्य नहीं रहेगा। देखो थोड़ा आगे पढ़ते हैं, जो जीव सूक्ष्म एकेंद्रियों में कर्म स्थिति प्रमाण काल तक घूम लिया है, उस एकेंद्रिय का कर्म स्थिति के अंतिम समय में प्राप्त होने वाला द्रव्य लो और इसमें अंतर्मूल से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण का भागार का भाग दो। इससे एकेंद्रिय के संचित द्रव्य में से उत्कर्षित द्रव्य का प्रमाण आ जाता है। उत्कर्षित द्रव्य का प्रमाण इसीलिए लाया गया है कि जघन्य स्वामित्व के समय में जो प्रकृति गोपुच्छा रहती है वह इस उत्कर्षित द्रव्य में से ही शेष रहती है, संचित द्रव्य में से नहीं। वही बात बताई, संचित द्रव्य तो चला जाएगा और उत्कर्षित होकर जो कुछ रहेगा अंतिम निषेक में वो यहाँ रह जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रिय के मिथ्यात्व का स्थितिबंध कुछ कम एक सागर प्रमाण होता है और यहाँ गोपुच्छा कर्म स्थिति के अंतिम समय से लेकर साधिक 132 सागर के बाद की प्राप्त करना है। परंतु इतने काल तक एकेंद्रिय संबंधी बंध से प्राप्त स्थिति वाले निषेक रह नहीं सकते। ये बात ख्याल में आई? एकेंद्रिय में जो बंधे हैं वो सागर में समाप्त हो जाएंगे और आगे चलकर बहुत बार सम्यक्त्व संयम प्राप्त कराना है और 132 सागर तक सम्यक्त्व के साथ घुमाना है। अतः संचित द्रव्य को छोड़कर यहाँ अपने आप उत्कर्षित द्रव्य की प्रधानता प्राप्त हो जाती है। यानी जो नया बंध होगा उसमें से वो उत्कर्षण होना चाहिए। एक सागर वाला तो अधिक उत्कर्षित नहीं हो सकता, एक सागर वाले का उत्कर्षण एक सागर तक ही होगा, ज्यादा नहीं। अतः यह सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव कर्म स्थिति प्रमाण काल को समाप्त करके साधिक 132 सागर काल तक त्रसों में घूमता है। ये बाकी जो काल है वो साधिक में लिया, इतनी बार ये प्राप्त किया वगैरह वगैरह सब साधिक में रखा, तब कहीं जघन्य द्रव्य प्राप्त होता है। वेदना खंड की बात तो नहीं ली है, यहाँ चूर्णी सूत्र का ही विशेषार्थ चल रहा है, क्योंकि वहां तो पल्ले के असंख्यात भाग पहले वो बाहर आया था। देखो ये पुनः दोबारा उसको सूक्ष्म एकेंद्रियों में भेजा है ना, तभी की बात है। पहले तो कर्म स्थिति प्रमाण रहा एकेंद्रिय में, बराबर, दोबारा वो सूक्ष्म में चला गया था। हाँ, तो वहां तो कर्म स्थिति प्रमाण उसमें निषेक हो सकते, यानी परमाणु हो सकेंगी, उनकी स्थिति घटाई केवल, दोबारा वो कर्म स्थिति प्रमाण नहीं घुमा है। यानी उतने काल में बंधे हुए तो नहीं रहेंगे बाद में, परंतु बीच में वो अंत कोड़ा कोड़ी वाला उसने किया ही होगा ना, बीच में मिथ्यात्व भी किया, सम्यक्त्व भी किया, और मिथ्यात्व में जाके वो सूक्ष्म एकेंद्रियों में गया है। अब ऐसे सूक्ष्म एकेंद्रियों में गया है तो पहले वाला जो द्रव्य उसका उत्कर्षण फिर दोबारा हो सकता है। अब यहाँ कौन से वाला है वो बराबर उन्होंने लिखा नहीं है, हम इतना ही देखते हैं। ये जो हम अंतिम निषेक जो प्राप्त करेंगे तो 132 सागर के बाद वाला लेना है। 132 सागर तक वो घूमा है पहले त्रस पर्याय में, क्योंकि 132 सागर तक उसने नया बंधन नहीं किया है मिथ्यात्व का। जो सत्ता में है उसका तो संक्रमण चलता रहा, क्योंकि उसका मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक तो रूप से संक्रमण चलता रहेगा। और ऐसे होने के बाद उसने क्षपणा की है, और क्षपणा के काल में तो हमने देखा ना, पहले तो संक्रमित करेगा और फिर लास्ट जितने रहेगी उसको एक एक करके संक्रमित करेगा, और वो लास्ट निषेक बाकी रहेगा। उस लास्ट निषेक की बात यहाँ ले रहे हैं। देखो हम यहाँ पढ़ रहे थे, अतः सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव मिला कर्म स्थिति प्रमाण काल को समाप्त करके साधिक 132 सागर काल तक त्रसों में घूमता है, तब कहीं जघन्य द्रव्य प्राप्त होता है। क्योंकि इतने 132 सागर तक उसका एक एक निषेक तो गलेगा ही, और त्रसों में संगीत रसों में श्रेणी को छोड़कर अन्यत्र अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बंद होता है। कम से कम की बात चल रही है, अधिक होता है उसे। संगीत रसों में का अर्थ होता है संगी पंचेंद्रियों में, संगी पंचेंद्रियों में उनका बंध मिनिमम कितना है, अंत कोड़ाकोड़े, क्योंकि त्रस तो द्विंद्रिय भी हो सकते हैं, तो द्विंद्रिय त्रसों में कितना बंध होगा, 25 सागर या उसमें कुछ कम। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, मैक्सिमम होगा तो भी कितना होगा, यहाँ मैक्सिमम तो 70 को, मैक्सिमम 70, परंतु श्रेणी को छोड़कर मिनिमम कितना होगा, अंत मिथ्यात्व का मिनिमम बंद संगी पंचेंद्रियों में अंत कोड़ाकोड़ी सागर होगा। और यहाँ जो अन्यत्र अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण बंध लिखा है, श्रेणी में अन्य कर्मों की बात ली, वहां तो मिथ्यात्व का बंध का सवाल नहीं है। अन्य प्रकृति भी, कोई भी प्रकृति कितनी बंधेगी, अंत कोड़ाकोड़ी श्रेणी में भी और अन्यत्र भी। श्रेणी में ऊपर जाके फिर संज्वलन आदि कषायों की कम हो जाती है, अंत कोड़ाकोड़ी से भी कम हो जाता है जब क्षपणा करना शुरू करता है तब। मुनियों के भी अंत कोड़ाकोड़ी है, जो सामान्य मुनिराज है, जो श्रेणी चढ़ना शुरू करते हैं उनका स्थिति बंध और घटता है, यानी असंगी जैसा हो जाता है, 1000 सागर, फिर उससे भी कम होता है, उससे भी कम होता है। हाँ, परंतु उसको अगर हम गौण करेंगे, श्रेणी की बात रहने दो, तो अन्यत्र कितना होता है, अंत कोड़ाकोड़ी। अतः अंत कोड़ाकोड़ी सागर के भीतर प्राप्त होने वाली नाना गुणहानि शलाकाओं की जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि प्राप्त हो, एक कम उसमें 132 सागर कम अंत कोड़ाकोड़ी के भीतर प्राप्त होने वाली नाना गुणहानि शलाकाओं की एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि का भाग दो। देखो, दो अन्योन्य अभ्यस्त राशि का आपस में भाग दिया है, कौन से, एक तो अंत कोड़ाकोड़ी के जितने नाना गुणहानि है। अन्योन्य अभ्यस्त राशि कैसे निकालते हैं, जितनी गुणहानियां है उतनी बार दो लिखो, आपस में गुणा करो, उसको कहेंगे अन्योन्य अभ्यस्त राशि। तो अंत कोड़ाकोड़ी की जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि होगी उसको भाग किसका देना, 132 नहीं, 132 कम अंत कोड़ाकोड़ी। देखो हाँ, इन्हें अंत कोड़ाकोड़ी माइनस 132, उसकी जितनी अन्योन्य अभ्यस्त राशि होगी उससे वो ओरिजिनल वाले को भाग देना। दोनों में एक एक कम करके उसका भाग देना उसको। अन्योन्य अभ्यस्त राशि एक एक्स होगी तो एक्स माइनस वन, और दूसरी अन्योन्य अभ्यस्त वाई आए तो वाई माइनस वन। एक सौ देखो अंत कोड़ा कोड़ी माइनस 132 सागर, उसकी गुणहानियां कम होगी कि नहीं? पहले अंत कोड़ा कोड़ी की गुणहानियां निकाले। मान लेते हम अंत कोड़ा कोड़ी की 8 है और 132 सागर कम करो उसकी कितनी होगी? 6 है मान लेते हैं। तो 8 बार आपस में गुणा करो दो को तो कितना आया? 8 किसका अर्ध छेद है? 256 का। तो ऊपर 256 माइनस 7 ये 255 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे 6 लिया अभी हमने, तो 6 का कितना आता है? 64 आता है। हाँ तो 64 में से एक कम कर दो तो वहाँ 63, तो 255 डिवाइडेड बाय 63 इनके अकॉर्डिंग। पहले वाले अन्योन्य अभ्यस्त राशि माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये अंत कोड़ा कोड़ी माइनस 132 सागर की जितनी अन्योन्य अभ्यस्त राशि है उसमें से माइनस 1, और इस प्रकार जो राशि प्राप्त हो उसका भाग पूर्वोक्त उत्कर्षण से प्राप्त हुए द्रव्य में देने पर, पहले कितना द्रव्य टोटल उत्कर्षित किया उसको इस विशिष्ट संख्या का भाग देना, उस उत्कर्षित द्रव्य में से 132 सागर के भीतर जितना द्रव्य गल जाता है उससे बाकी बचे हुए द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है। ये दो अन्योन्य अभ्यस्त राशि का आपस में भागार किया, पहले जो उत्कर्षित द्रव्य अलग निकाला था उस उत्कर्षित द्रव्य को उस संख्या को इस लब्ध राशि से भाग दिया तो हमें क्या मिल गया? 132 सागर में कितना द्रव्य गल गया वो मिल गया हमें, यानी उससे बाकी बचे हुए जितना गल गया उसको छोड़कर बाकी बचा हुआ द्रव्य मिल गया। यथा संचित द्रव्य को प्राप्त करने के लिए एक समय प्रबद्ध को डेढ़ गुणहानि से गुणित करना पड़ता है, हमेशा संचित द्रव्य कितना होता है? डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध। अतः यहाँ प्रकृति गोपुच्छा को प्राप्त करने के लिए गल कर शेष बचे हुए द्रव्य में डेढ़ गुणहानि का भाग दो, हमें एक निषेक प्राप्त होगा ना उसमें डेढ़ गुणहानि का भाग देने पर, एक समय प्रबद्ध क्या प्राप्त होगा? क्या कहते हैं? डेढ़ गुणहानि गुणा समय प्रबद्ध इज इक्वल टू संचित द्रव्य, संचित द्रव्य डिवाइडेड बाय डेढ़ गुणहानि इज इक्वल टू वहां का समय प्रबद्ध। अब जो खिरने वाला है उसी को यहाँ प्रकृति गोपुच्छा कहा। इस प्रकार इतनी क्रिया के करने पर प्रकृति गोपुच्छा प्राप्त होती है, क्योंकि 132 में कितना द्रव्य गल गया है अभी उसमें से जितना संचित द्रव्य है उसको डेढ़ गुणहानि से भाग दो तो हमें उस एक निषेक की वैल्यू आ गई, उसमें कितने परमाणु हैं उसकी वैल्यू मिल जाती है।
यहाँ पे ये प्रकृति गोपुच्छा होगी कि विकृति गोपुच्छा होगी, क्योंकि यहाँ पे तो उलट पुलट ये गुण श्रेणी की रचना होती है, नीचे कम में बीच में ज्यादा।
हाँ वही आपके शंका आई है, पूछते हैं देखो इसे प्रकृति गोपुच्छा क्यों कहते हैं? समाधान, क्योंकि इसमें स्थिति कांडक के द्रव्य के बिना उत्कर्षण के द्वारा यथा निक्षिप्त प्रदेशों का ही ग्रहण होता है, अतः इसे प्रकृति गोपुच्छा कहते हैं। यानी उत्कर्षण के द्वारा इसमें प्राप्त हुए हैं तो उत्कर्षण से भी होगा तो उसमें प्रकृति गोपुच्छा में ही उसको लिया था, हमने पहले देखा था उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण से कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है, उसको प्रकृति गोपुच्छा ही कहते हैं। फिर शंका, निषेक स्थिति में जिस क्रम से निषेकों की रचना होती है, हमने पहले देखा था जब पहले बंद होता है तो जैसी निषेक रचना होती है उस क्रम से अवस्थान नहीं रहता, वैसे ही परमाणु नहीं रहते, ऊपर नीचे होते रहते, क्योंकि अपकर्षण के द्वारा उसका विनाश देखा जाता है। कितने परमाणु का अपकर्षण के द्वारा नाश भी होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निषेक स्थिति में आय और व्यय के समान होने से वह विकृति गोपुच्छा नहीं हो सकते। क्या कहते हैं, जो प्रकृति गोपुच्छा है, जितने निषेक है उसमें से कोई एक, हम बीच वाला कोई निषेक लेते हैं, उसमें से कितना ही द्रव्य नीचे चला जाता है और ऊपर का कितना ही उसमें आ मिलता है, या ऊपर के भी गोपुच्छा हो तो उसमें कितने ही द्रव्य का अपकर्षण होकर नीचे जाता है, अन्य कितने ही परमाणु उत्कर्षित होकर उसमें आ मिलते हैं, तो जितने के उतनी बने रहती है, तो जितना आ यानी नया आकर मिलता है उतना ही उसमें से चला जाता है, तो फिर भी उसको प्रकृति गोपुच्छा ही कहेंगे। निषेक तो वैसा वैसा बना रहा है ना, उसमें से कुछ निकल गया, कुछ उसमें आ गया।
पर यहाँ पे तो आसित तो नहीं है, ये मिथ्या तो प्रकृति की बात है। 132 सागर तक तो उसको सम्यक्त्व के साथ घुमाया है।
हाँ, एक उसमें तो हमने उसको माइनस किया था।
हाँ, वो बचे हुए,
परंतु जो पहले में वहाँ थी वो प्रकृति को पूछा रहेगी कि नहीं रहेगी। सम्यक्त्व तो होने के बाद उसमें कोई उत्कर्षण होने का सवाल नहीं है, परंतु बीच बीच में मिथ्यात्व में कितना घुमा, इतने बार उसने संयम असंयम संयम धारण किया, बीच बीच में मिथ्यात्व में गया ही होगा। जब 132 सागर लगातार रहा सम्यक्त्व में, तब तक उसमें हमने एक एक अधोस्थिति के द्वारा एक एक गल गया इतना लिया था। वहां तो उत्कर्षण होने का सवाल नहीं है, वहां 132 के पहले उसका उत्कर्षण हो रहा था ना, उसकी बात है। तो जितना उत्कर्षित होता है अपकर्षित भी हो जाता है, अपकर्षण भी सामान्य से भी ऐसे चलता रहता है। ये शंकाकर वही पूछता है, वहां आय और व्यय समान होते हैं यह किस प्रमाण से जाना, तो कहते युक्ति से जाना। वह युक्ति इस प्रकार है, डेढ़ गुणहानि गुणित एक समय प्रबद्ध में, यानी वो संचित द्रव्य जितना सत्ता में है वो कितना रहता है, डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध, उसमें अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणित प्रकृति गोपुच्छा के भागार से भाग देने पर प्रकृति गोपुच्छा का व्यय प्राप्त होता है।
ये समझ में नहीं आया, अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणित गोपुच्छा के भागार से भाग देने पर प्रकृति गोपुच्छा के,
यानी एक प्रकृति में से कितना गया। हम अपकर्षण भागहार से भाग देते हैं तो क्या होता है, पूरा कितना द्रव्य निकलेगा वो मिलता है, परंतु प्रत्येक निषेक में से कितना मिला।
अच्छा,
एक एक निषेक, तो एक एक निषेक के लिए जो कोई भागहार वहां होगा उससे भी भाग देना पड़ेगा। हम इक्वल भी मान लेते हैं समझने के लिए, हमारे पास 40 निषेक है और 40 निषेक में से मिलकर मान लेते एक से इतना द्रव्य निकला, तो फिर उसको 40 से भाग देंगे तो एक निषेक की बात नहीं की, परंतु यहाँ तो प्रत्येक निषेक में से कितना निकलेगा वो तो निश्चित है, जितने उसमें परमाणु है उसके प्रपोर्शन में उसमें से परमाणु नीचे आ जाएंगे, इसलिए वो प्रकृति गोपुच्छा का भी जो भागहार है यानी दो भागहार से भाग देना, जितना संचित द्रव्य है कितना है, डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध डिवाइडेड बाय अपकर्षण उत्कर्षण भागहार मल्टीप्लाइड बाय, नीचे ही मल्टीप्लाई करना भागहार में प्रकृति गोपुच्छा का भागहार, वो निषेक की वैल्यू निकालने के लिए जो होता है भागहार उसको प्रकृति गोपुच्छा का भागहार, तो हमें एक प्रकृति में से व्यय का प्रमाण आ जाएगा, तथा डेढ़ गुणहानि से गुणित जो अपकर्षण उत्कर्षण भागहार है उससे गुणित। अब यहाँ उत्कर्षण अपकर्षण भागहार को गुणा कर दिया डेढ़ गुणाने से, उससे गुणित जो 266 सागर काल से गलित से बाकी बचे द्रव्य का भागहार उससे डेढ़ गुणानि गुणित एक समय प्रबद्ध में भाग देने पर प्रकृति गोपुच्छा की आय आती है।
यह नया बंध नहीं है तो उत्कर्षण भी होगा।
हाँ, इसीलिए वो 266 सागर काल छोड़कर बाकी द्रव्य की बात की। और आय में ऐसा भी ले सकते हैं ना, बीच वाले कोई है तो उसका अपना द्रव्य नीचे जाएगा और ऊपर का द्रव्य उसमें आएगा। नहीं समझे?
जो ऊपर के निषेक बीच में क्या होते हैं,
वो बीच वाले निषेकों में से कुछ द्रव्य नीचे जाएगा और कुछ उसमें ऊपर से आएगा। तो ये रचना ऐसी बनी रहती है। मान लेते यहाँ से नीचे भी जाएगा और ऊपर से भी यहाँ आएगा, तो जितना आए है वहां उतना ही व्यय होगा। जब जब मिथ्यात्व का बंध है तब उत्कर्षण भी होगा और अपकर्षण भी होगा। तो आय और व्यय समान है, इतनी बात इनको बतानी है। अब इसके लिए जो भागार बताए हैं इतना ही जानना है कि जितनी आय है उतना ही व्यय है। ये दोनों आय और व्यय समान है क्योंकि दोनों जगह भाज्य राशि के समान होते हुए। भाज्य राशि कितनी ली है? डेढ़ गुणानि गुणित समय प्रबद्ध, दो अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणित, 266 सागर की नाना गुणानि शलाकाओं की अन्योन्य व्यस्त राशि से उत्पन्न हुआ डेढ़ गुणानि का भागार समान पाया जाता है। अब ये तो उनके कोई गणित तो अपने ख्याल में नहीं आया, इतना ही समझना है। उसका भी और विशेषार्थ में क्या समझाते देखेंगे हम। शंकाकार का कहना है कि उत्कर्षण के होने पर जिस क्रम से निषेक स्थापित रहते हैं उसी क्रम से नहीं रहते, क्योंकि वो तो एक इंद्रियादि में जो, या जब मिथ्यात्व अवस्था में था तब तो उत्कर्षण होता था, या बंद भी पहले हुआ था तो जैसा बंदा है वैसा ही कायम तो रहता नहीं है, क्योंकि स्थिति और अनुभाग के बढ़ाने को उत्कर्षण कहते हैं और उनके घटाने को अपकर्षण कहते हैं। जिन प्रदेशों में स्थिति अनुभाग बढ़ाया जाता है उन्हें नीचे की स्थिति से उठाकर ऊपर की स्थिति में डाल दिया जाता है, और जिन प्रदेशों में स्थिति अनुभाग घटाया जाता है उन्हें ऊपर की स्थिति से उठाकर नीचे की स्थिति में फेंक दिया जाता है। इसका उत्तर दिया गया है कि आय और व्यय के समान होने से निषेकों का स्वरूप जो का त्यों बना रहता है। ये बात मुख्य बताना चाहते हैं। आय और व्यय दोनों में भाज्य राशि यानी जिसको भाग देना है, भाज्य राशि तो डेढ़ गुणानि प्रमाण समय प्रबोधों की संख्या है। दोनों में देखा था ना हमने, और भाजक राशि वे में तो अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणित प्रकृति गोपुच्छा का भागार है, हमने देखा था ना पहले। वे में वे कैसे निकालना है? भाज्य राशि तो सर्वत्र सेम है, कौन सी? डेढ़ गुणानि गुणित समय प्रबद्ध। भाग देने वाली राशि कौन सी है? व्यय में अपकर्षण उत्कर्षण भागार मल्टीप्लाइड बाय प्रकृति गोपुच्छा का भागार, और आय में डेढ़ गुणानि और अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणित 132 सागर काल में गलित से बाकी बचे द्रव्य का भागार, भागार पूरा। ये दोनों समान है क्योंकि दोनों जगह गुणकार में अपकर्षण उत्कर्षण भागार है।
ये प्रकृति गोपुच्छा का भागार है, वो कौन सा भागार है? वो अन्य अन्य वाला है?
नहीं नहीं नहीं, अन्योन्य अभ्यस्त राशि वाला कैसे निकलेगा उससे?
वो तो बाकी रहा द्रव्य के लिए, वो भागाकर देखा था।
उससे तो अंतिम गुणानि का पूरा द्रव्य आता है, उसकी बात नहीं लेनी यहाँ पर।
तो
इतना ही लेना, दोनों में भागाहार में अपकर्षण उत्कर्षण का गुणकार है ही, और बाकी जो कुछ है अन्य। तथा इधर आय में डेढ़ गुणानि से 132 सागर के काल में कलित से बाकी बचे द्रव्य के भागहार को गुणा किया है, और उधर व्यय में उत्कर्षित द्रव्यों में से गलित शेष द्रव्य को लाकर उसमें डेढ़ गुणानि का भाग देने से प्रकृति गोपुच्छा आती है। देखो ये यहाँ लिखा प्रकृति गोपुच्छा का भागहार क्या है, उस यहाँ बताया क्या लिखा है। उत्कर्षित व्यय में क्या लेना है, उत्कर्षित द्रव्यों में से गलित शेष द्रव्य को लाकर उसमें डेढ़ गुणानि का भाग देने से प्रकृति गोपुच्छा आती है। हमने वही बताया था जो कि भागहार रूप है। यानी जितना उत्कर्षित हुआ है उससे जो बाकी बचा है उसको डेढ़ गुणानि का भाग देंगे तो एक निषेक की वैल्यू आ गई।
आगे हमने समाधान में क्या पढ़ा था, आय और व्यय समान है।
हाँ।
तो उत्कर्षण और अपकर्षण से द्रव्य का सत्ता में से निकलना नहीं होता है, खाली कांडक होता है तभी ये एक एक ज्यादा द्रव्य निकलता है, इसे उनका बताना है।
नहीं नहीं नहीं, देखो देखो यहाँ तो पहले दोनों सेम कैसे उसको देखेंगे।
हाँ।
यहाँ पर आगे का देख सारांश बताते, देखो सारांश है कि आय में आय और व्यय का समान क्यों कहा, भाज्य राशि तो दोनों जगह समान है।
हाँ।
आय में डेढ़ गुणानि से गुणित गलित शेष द्रव्य का भागहार भाजक राशि है। क्या कहा, आय में भागहार क्या लिया,
डेढ़ गुणानि से गुणित गलित
डेढ़ गुणानि से गुणित गलित शेष द्रव्य का भागहार भाजक राशि है, और व्यय में प्रकृति गोपुच्छा का भागहार भाजक राशि है। डेढ़ गुणानि से गुणित करके शेष द्रव्य का भागहार पूरा लिया, और यहाँ गोपुच्छा का भागहार लिया। ये दोनों राशियां समान हैं, अतः आय और व्यय की भाज्य राशि और भाजक राशि समान होने से दोनों का प्रमाण समान होता है। अतः जितने प्रदेश आते जाते हैं उतने ही आ जाते हैं, इसलिए उत्कर्षण के द्वारा प्रदेशों का व्यतिक्रम नहीं होता। बात इतनी बताना चाहते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ परमाणु है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, जितने जाते हैं उतने ही आते हैं।
पर यहाँ पे तो उत्कर्षण हो ही नहीं रहा है, बराबर है। तो ऊपर की निषेक में आय और व्यय कैसे समान बता सकते हैं?
जहाँ उत्कर्षण हो रहा है उसी की बात चल रही है। मिथ्या तो अवस्था में उत्कर्षण है कि नहीं है, जहाँ पर बंद है।
हाँ।
उसी की बात चल रही है, इसलिए 132 को निकाला है वहां से, उसकी बात नहीं है। उसके पहले भी उत्कर्षण तो होता था कि नहीं होता था? उसकी बात ली है। शंका, यह परिहार नहीं घटता। अभी शंका करके लंबी चौड़ी शंका है, और वो स्वयं खुलासा कर रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। प्रकृति गोपुच्छा से अपकर्षण उत्कर्षण भागहार के द्वारा जो द्रव्य नीचे निक्षिप्त किया जाता है, यानी वो प्रकृति को पूछा है क्या है? ये जो निषेक है, पहले जो बने थे निषेक, उसमें से जो द्रव्य नीचे निक्षिप्त किया जाता है यानी अपकर्षित होता है, वह सदा आय के समान ही होना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि समान परिणाम वाले क्षपित कर्मांश सत्कर्म वाले जीवों में भी अपकर्षण उत्कर्षण की वजह से एक समय प्रबद्ध की वृद्धि या हानि देखी जाती है। यानी जो कोई दो अलग अलग क्षपित कर्मांश वाले जीव देखेंगे तो उसमें भी अपकर्षण उत्कर्षण के कारण वो जो निषेक है या समय प्रबद्ध है उसकी हानि या वृद्धि देखी जाती है। दो अलग अलग जीव लिए हैं, हाँ, क्योंकि उनमें भी परमाणु में अंतर होगा ना, तो उनके आय और व्यय समान नहीं, ये बात बताना चाहते हैं। अभी शंकाकार की शंका पूरी क्या है, किस पर ऑब्जेक्शन है उसको देखते हैं। इससे समान परिणाम होने से यहाँ आय और व्यय समान होते हैं यह बात नहीं रही, प्रत्युत यहाँ तो व्यय से आय यथासंभव थोड़ी ही होनी चाहिए, अन्यथा प्रकृति गोपुच्छा में स्तोकपना नहीं बन सकता। यहाँ क्या कहते हैं, हमें तो जघन्य में जघन्य प्रदेश लाने हैं, तो उसके व्यय ज्यादा कराओ आय कम कराओ तभी तो ये बन सकता है। शायद कहा जाए कि गोपुच्छाकार रूप से स्थित समस्त निषेकों के द्रव्य को अपकर्षण उत्कर्षण भागहार से भाजित करके उसमें से एक भाग लेकर उस भाग को उसी गोपुच्छाकार रूप से उसी में प्रक्षिप्त कर देने पर आय और व्यय में असमानता नहीं रहती, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्या कहते हैं, इतना द्रव्य अपकर्षित किया और फिर हमने उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन किया तो उतना ही उसी निषेक में जाता होगा, ऐसा कोई कहेंगे? ये तो शंका कर की शंका, ऐसा स्वयं शंका उठाता है, स्वयं उत्तर देता है कि ऐसा तो कहना ठीक नहीं है। क्यों? किसी भी निषेक के द्रव्य को नीचे लाएगा तो एक आवली प्रमाण नीचे के निषेक छोड़कर उसके नीचे चले जाएंगे, अपने अपने नीचे के आवली प्रमाण निषेकों में नहीं दिया जाता। वही कहते हैं, क्योंकि एक आवली प्रमाण स्थितियां नीचे उतर कर निक्षिप्त किए जाने वाले प्रदेशों में समानता नहीं बन सकती, वो तो नीचे चले जाएंगे, इसमें आने वाले कोई अन्य आएंगे, इसमें से जो परमाणु है वो नीचे के आवली प्रमाण छोड़कर उसके नीचे जाते, उसी निषेक में दोबारा नहीं दिए जाते। तो इसी पर यो ऑब्जेक्शन ले रहे क्या, उसको अभी हम देखेंगे। हाँ, ऐसा नियम नहीं, देखो, तथा नियम से एक आवली प्रमाण उतर कर ही प्रदेश निक्षिप्त किए जाते, ऐसा नियम नहीं, क्योंकि संख्यात पल्योपम प्रमाण नीचे उतरना भी संभव है, यानी आवली तक तो नहीं उतरते परंतु उसके नीचे कहाँ तक जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे, जितनी उदय आवली तक भी जाएंगे ना, कहीं तक भी, यानी वो कितने होगी स्थिति, कितनी होगी, तो संख्यात पल्योपम कितना भी होगा, 70 कोड़ाकोड़ी वालों में भी यदि अपकर्षण होता है तो उसमें भी उदयावली तक भी दिया जाएगा, तो कितने भी सागर क्यों ना हो वो तो संख्यात पल्ले कहेंगे। कहना क्या चाहते हैं, अपना अपना माल मात्र आवली प्रमाण नीचे चला जाता है इसी बात नहीं है, उस आवली के नीचे के पहला समय दूसरा समय तीसरा समय कितना, जितनी अभी उसके नीचे जितनी है उदयावली तक के सभी निषेकों में उसका निक्षेप होना संभव है, इसलिए कहते संख्यात पल्योपम प्रमाण नीचे उतरना भी संभव है। अतः आय और व्यय समान है ऐसा जो तुमने कहा है वह घटित नहीं होता, उसका यही कहना है कि वो कितने ही नीचे के सभी निषेकों में उसके माल चला जाता है, जितना उसमें से निकला उतना ही उसमें कैसे जा सकता है, ये उसका प्रश्न है। दूसरा कारण बताता है, विद्यात भागार के द्वारा 2-66 सागर तक प्रकृति गोपुच्छा का प्रति समय सम्यक्तर सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण होता रहता है, इसलिए इस कारण से भी प्रकृति गोपुच्छा का यथा निक्षिप्त रूप से अवस्थान नहीं बनता। ये विद्यात भागार क्या होता है, जैसे हमने पहले गुण संक्रमण देखा था, वहाँ विशिष्ट भागार देने पर जितने परमाणु में उसका संक्रमण होता है और वो गुणित प्रमाण से होता है, यानी संक्रमित होने वाले परमाणुओं का प्रमाण ज्यादा है। विद्यात संक्रमण जो है शुरू में तो विशुद्धि बहुत थी, बाद में फिर वो तो स्टेबल हो जाती है, कम होती है, तो उसमें विद्यात नाम का भी भागार होगा, इसको विद्यात संक्रमण कहते हैं। तो उस भागार से भाग देने पर जितने परमाणु है वो मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व रूप से परिणमित होते रहते। ये तो 2-6 सागर काल तक चलेगा नहीं, कंटिन्यूस। संयम आदि में तो ज्यादा हो जाएगा, परंतु यहाँ देखो हमने क्या देखा था, 5वें गुणस्थान वाले के, 6-7वें गुणस्थान वाले के गुण श्रेणी हमेशा बनी रहती है। और वहां तो संक्रमण भी वैसे होगा। अब यहाँ क्या ले रहे हैं, विद्यात भागार के द्वारा यहाँ जो संक्रमित भले छोटे हैं, फिर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। शंकाकार की शंका यही है कि 132 सागर तक, उसके लिए उसने 2-6 सागर कहा। तो विद्यात भागार के द्वारा 2-6 सागर तक प्रकृति गोपुच्छा का ये जो निषेक है, उसमें से प्रति समय सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण होता रहता है। सब जगह होगा। इसलिए इस कारण से भी प्रकृति गोपुच्छा का यथा निक्षिप्त रूप से अवस्थान नहीं बनता, जैसे उसमें है उतना ही उसका बना रहे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो निषेक हमेशा घटता चला जाएगा, क्योंकि संक्रमण हो रहा है। हाँ, ये उसका प्रश्न है। तो फिर ऐसा लेना चाहिए, अपकर्षण, ये समाधान कर रहे हैं, अपकर्षण उत्कर्षण के द्वारा जो आय व्यय होता है और पर प्रकृति रूप संक्रमण के द्वारा जो व्यय होता है, उनसे प्रकृति गोपुच्छपना नष्ट नहीं होता, यानी उसका निषेक जो है वो उसको वो नष्ट नहीं होता, उसमें से थोड़ा माल चला जाता है, क्योंकि विकृति गोपुच्छा के द्रव्य से और गुणश्रेणी के द्रव्य से भिन्न जो बाकी का द्रव्य है उसे प्रकृति गोपुच्छा रूप से माना गया है, यानी भले उसमें से संक्रमित हो गया, वो छोटा हो गया, तभी उसको प्रकृति गोपुच्छा ही कहेंगे। फिर इसी का विशेषार्थ,
ये विकृति गोपुच्छा का द्रव्य जो बताया है वो तो पूरा द्रव्य लेना पड़ेगा ना?
नहीं नहीं, विकृति गोपुच्छा यानी स्थिति कांडक के काल में जो होती है उसमें से तो कितने फले निकल जाती है, और वो निषेक पूर्ण रूप से नहीं रहता है। जैसे हाँ ट्रायंगुलर नहीं रहता,
तो वहाँ पे तो सभी निषेक लेने पड़ेंगे, तो वहाँ पे तो
अभी स्थिति कांडक जितने कांडक का घात हो रहा है उतने ही कांडकों को विकृति रूप हो जाती है ना।
अच्छा, विकृति गोपुच्छा वो सभी निषेकों को
नहीं, सभी को नहीं लेना है,
जितने
विकृत रूप से हो रहे उसी को लेना है, या गुण श्रेणी में जो पहले तो है वो तो अलग टाइप के हो गए, अभी उसको भी छोड़ना। यहाँ क्या कहते हैं, देखो वहां भी हमने देखा है, सवाल क्या है, मिथ्यात्व का जो अंतिम निषेक है वो प्रकृति को पूछा वाला है, ऐसे कहते ना। अभी उसमें गुणश्रेणी वगैरह जो कुछ हुई थी पहले, और अभी गुण संक्रमण के द्वारा जो संक्रमित हुआ था, उसके बाद वहाँ जो निषेक बचे हैं, तो ऊपर से नीचे आए उदयावली में, और जो बाकी ऊपर है वो कांडक रूप से टर्न हो गए, यही बात बताना है उनको। तो ये जो लास्ट में बचेगी वो प्रकृति गोपुच्छा है, इतना ही बताना है उनको। माना गया है, देखो विशेषार्थ पढ़ेंगे फिर इसका। पहले प्रकृति गोपुच्छा का प्रमाण बतलाए हैं, उस पर शंकाकार का यह कहना है कि इसे प्रकृति गोपुच्छा क्यों माना जाए, उस पर उसका ऑब्जेक्शन है। तब इसका समाधान यह किया, इसमें स्थिति कांडक घात से प्राप्त द्रव्य का ग्रहण नहीं किया है, किंतु केवल उत्कर्षण से प्राप्त होने वाले द्रव्य की जो यथाविधि रचना होती है उसी का ग्रहण किया है, इसलिए इसे प्रकृति गोपुच्छा मानने में कोई आपत्ति नहीं। यानी इसमें दूसरा द्रव्य होता ही नहीं, वो बात नहीं है, परंतु उसको हम गौण करके बाकी जो है उत्कर्षण रूप से प्राप्त हुआ द्रव्य यहाँ ग्रहण किया है। इस पर फिर यह शंका की गई, निषेक स्थिति के निषेकों की जिस क्रम से रचना होती है, उत्कर्षण के द्वारा वह नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, अतः उसे प्रकृति को पूछा मानना ठीक नहीं है। जब उत्कर्षण होता है तो पहले वाला नहीं रहेगा, उसका भी आकार साइज बदल जाता है। इस पर आय और व्यय की समानता दिखलाकर यह सिद्ध किया कि इससे प्रकृति को पुच्छा जैसी की तैसी बनी रहती है। इस पर फिर शंका हुई, अपकर्षण उत्कर्षण द्वारा सदा आय और व्यय समान ही होता है, ऐसा कोई एकांतिक नियम नहीं है? उदाहरणार्थ समान परिणाम वाले दो क्षपित कर्मांश जीव लीजिए, उनमें से एक के अपकर्षण द्वारा एक समय प्रबद्ध की हानि और दूसरे के उत्कर्षण द्वारा एक समय प्रबद्ध की वृद्धि देखी जाती है। अतः यह नियम तो रहा नहीं कि समान परिणाम होने से आय और व्यय समान ही होता है। दूसरा पॉइंट, अभी
समान परिणाम की अपेक्षा अपकर्षण और उत्कर्षण समान हो जाता है इसे बताए तो वहाँ पे उत्कर्षण कैसे होगा, क्योंकि परिणाम को तो समानता बताई है। अपकर्षण तो समझ गए, पर उत्कर्षण भी इतना ही होगा समान परिणाम की अपेक्षा, जितना अपकर्षण हो रहा है इतना ही उत्कर्षण हो रहा है।
उत्कर्षण फिर मिथ्यात्व वाले को लेना चाहिए ना, उत्कर्षण में तो मिथ्यात्व
और इसका तो परिणाम समान नहीं हो सकता है, वहाँ पे तो परिणाम में विविधता होती है, ये विशुद्ध परिणाम है मंदता की ओर वाला।
कहाँ, यहाँ विशुद्धि की बात ही नहीं उठाई
है। विशुद्धि की बात नहीं है, पर यहाँ पे जो बात है
कषाय में मिथ्यात्व है तो कषाय में मंदता तो हो सकती है ना, अभी वो आनंदानुबंधी वाले नहीं रहेगी।
यहाँ पे तो परिणाम समान लिया है।
यही तो शंकाकार की शंका है ना, इसलिए हम आगे देखते हैं। दूसरे अपकर्षित होने वाले द्रव्य का सब निषेकों में निक्षेप न होकर एक आवली प्रमाण या कभी कभी संख्यात पल्ल्य प्रमाण निषेकों को छोड़कर निक्षेप होता है, यानी मिनिमम उसका कितना, एक आवली प्रमाण छोड़कर, और हो सकता है डायरेक्ट नीचे ही आ जाए, तो संख्यात पल्ल्य प्रमाण छोड़कर होता है। इसलिए भी सब निषेकों में और आय और व्यय समान ही होता है यह कहना नहीं बनता। ये शंकाकार ने सभी शंकाएं उठाई है, जो हमने पहले पढ़ा है उसी का विशेषार्थ देख रहे हैं। तीसरे त्रस पर्याय में परिभ्रमण करते हुए जब यह जीव 132 सागर काल तक सम्यक्त्व के साथ रहता है, तब इसके मिथ्यात्व की प्रकृति गोपुच्छा प्रति समय सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमित होती रहती है। इससे भी स्पष्ट है कि प्रकृति गोपुच्छा की जिस प्रकार रचना होती है उस प्रकार वह नहीं रहती, पहले जैसे नहीं रही। तभी शंका का समाधान करते हुए यह बतलाया है, इस प्रकार अपकर्षण या उत्कर्षण से जो न्यूनाधिक यानी कम अधिक आय व्यय होता है, या सजातीय अन्य प्रकृति में संक्रमण होने से जो व्यय होता है, उससे प्रकृति गोपुच्छा में भले ही थोड़ी बहुत न्यूनाधिकता हो जाए, पर इससे प्रकृति गोपुच्छा का विनाश नहीं होता, यानी वो उतना उसका असंख्यात वा भाग है कि उसमें उस कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तात्पर्य यह है कि विकृति गोपुच्छा के द्रव्य के और गुणश्रेणी के द्रव्य के सिवा शेष सब द्रव्य प्रकृति गोपुच्छा का द्रव्य माना गया है। हाँ, वो नहीं के बराबर है, इतना ही कहना है। जैसे हम हमेशा पूछते हैं ना, ये संसार राशि में 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं, कब से अनादि से हो रहा है, तो कुछ कम होगी कि नहीं होगी? ऐसा ये प्रकृति गोपुच्छा में से थोड़ा बहुत चला गया तो कुछ नहीं होता कहते हैं। अब विकृति गोपुच्छा का प्रमाण कहते हैं। वह इस प्रकार है, 1.5 गुणाणि गुणित एक समय प्रबद्ध में, यानी पूरा टोटल द्रव्य लिया, अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणित 2 66 सागर की अन्योन्य व्यस्त राशि का भाग देने पर अधस्थिति गलना के द्वारा और पर प्रकृति रूप संक्रमण के द्वारा नष्ट होकर शेष बचे सब द्रव्य का प्रमाण होता है। ये जो निकल गया उसके शेष कितना द्रव्य रहा, तो पहले टोटल द्रव्य कितना था, तो 1.5 गुणाणि गुणित समय प्रबद्ध था, अभी 132 में जो निकल गया है उसके लिए क्या करना है, जो पहले जो द्रव्य था उसको किससे गुणा करना, अपकर्षण उत्कर्षण भागार मल्टीप्लाइड बाय दो छाछठ सागर की अन्योन्य व्यस्त राशि, इसके द्वारा क्या मिल गया, शेष बचा द्रव्य, शेष बचा द्रव्य मिला,
अधस्थिति गलाना और प्रॉपर प्रोटीन बचे हुए।
फिर इसमें अंतिम फाली का भाग देने पर विकृति गोपुच्छा का द्रव्य होता है। शंका, विकृति गोपुच्छा किसे कहते हैं? अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के करने पर जिन स्थिति कांडकों का पतन हुआ उनकी अंतिम फालियों का पतन होने पर स्वामित्व के समय में जो द्रव्य पतित हुआ उसे विकृति गोपुच्छा कहते हैं।
प्रतीत स्थिति कांडक की बात है?
हाँ, प्रत्येक स्थिति कांडक में
लास्ट समय
अंतिम फाली का पतन होने पर जो द्रव्य पतित हुआ उसे जो नया आकर मिला वो
हाँ।
जो पतित हुआ द्रव्य एक्स्ट्रा जो दिया जाता है उसको विकृति गोपुच्छा कहा। एक तो ओरिजिनल उसमें जो है वो प्रकृति गोपुच्छा, अब यह कांडक घात के द्वारा और उसमें आकर मिले नए अधिक निषेक आके मिले तो उसको कहेंगे विकृति गोपुच्छा। हाँ, अपूर्वकरण और वहां क्यों, क्योंकि वहां वो पतित होने वाला द्रव्य बहुत ज्यादा है। ओरिजिनल एक समय प्रबुद्ध होगा तो वहां असंख्यात समय प्रबुद्ध हो जाते हैं, जैसे गुणश्रेणी में दिया जाता है। नहीं समझे, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में क्या होता है, वो अपकर्षित द्रव्य वहां गुणश्रेणी आदि में जो दिया जाता है वो बहुत अधिक मात्रा में दिया जाता है।
वो भी वहाँ यहाँ पे तो लास्ट फाली का द्रव्य ही लिया है,
लास्ट फाली में ही मैक्सिमम द्रव्य,
बाकी
तभी तो डिफरेंस पड़ेगा। पहले वाला तो उसके असंख्यात भाग असंख्यात, पहले सभी फालियों का मिलकर भी जितना है उससे भी अंतिम फाली में असंख्यात गुना है। नहीं, स्थिति कांडक की अंतिम फाली, स्थिति कांडक हुआ अभी इतना बड़ा ऊपर का कांडक है, मान लेते ही चार का कांडक है, तो पहले उसका असंख्यात भाग गल गया, फिर और असंख्यात भाग गल गया, और असंख्यात भाग गल गया, ये अंतिम, अभी ये अंतिम फाली है, इसका जो गल गया वो ये इसमें दे दिया थोड़ा थोड़ा जो कुछ है।
तो वहाँ पे वो ही
अब ये जब दिया जाएगा तो बहुत डिफरेंस पड़ेगा,
तभी विकृत हो जाएगा।
हाँ, तो उसको विकृति गोपुच्छा कहेंगे। देखो फिर शंकाकार पूछ रहे हैं, द्विचरम आदि फालियों का पतन होते समय अंतिम फाली को ही क्यों लिया पतन होते समय विकृति को पूछा, उसके पहले इतनी सारी फालियां गई ना, अंतर्मूर्त में ये स्थिति कांड घात पूरा होता है तो अंतर्मूर्त के जितने समय है उतनी फालियां होगी, तो द्विचरम आदि फालियों के पतन होते समय विवक्षित गोपुच्छा में जो द्रव्य पतित होता है वह विकृति गोपुच्छा क्यों नहीं है। विशिष्ट ने एक किसी निषेक की बात चल रही है, स्थिति कांडक घात होकर उसका जो माल है वो सब नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम किसी एक गोपुच्छा की बात कहेंगे, तो यहाँ जो और एक्स्ट्रा दिया गया है उसी को विकृति गोपुच्छा क्यों कहा, उसके पहले भी अनेक फालियां गई उसका जब द्रव्य नीचे आया था उसको विकृति गोपुच्छा क्यों नहीं कहा, ये प्रश्न है। नहीं, क्योंकि अपकर्षण भागार के द्वारा आया हुआ होने के कारण उसका अंतर्भाव प्रकृति गोपुच्छा में ही हो जाता है।
तो यहाँ पे जो ये जो पहली फाली से जो लास्ट फाली छोड़कर जो बाकी की सब फाली जाती है तभी वो अपकर्षण भागार प्रमाण ही आता है।
हाँ, अपकर्षण भागार प्रमाण ही आता है, उसका असंख्यात भाग ही आता है। हाँ। और जो लास्ट वाला होगा असंख्यात बहुभाग होगा वो एक साथ आता है नीचे, उसमें तो कोई भागार का जरूरत नहीं ना, अंतिम फाली तो पूरी की पूरी आती नीचे, पहली फाली दूसरी फाली के लिए भागहार है। अब अंतिम फाली तो जितना है उतना सब आने वाला है नीचे। विशेषार्थ पहले हम विकृति गोपुच्छा का उल्लेख कर आए हैं, पर वहां उसका विशेष रूप से विचार नहीं किया, इसलिए हम उसके स्वरूप और प्रमाण पर विशेष प्रकाश डाला जाता है। विकृति का अर्थ है विकार युक्त और गोपुच्छा का अर्थ है गाय की पूंछ। तात्पर्य यह है कि गाय की पूंछ उत्तरोत्तर पतली होती हुई एक सी चली जाती है, पर रोगादिक अन्य कारणों से बीच में या अन्यत्र वह मोटी हो जाए तो वह गोपुच्छा विकार युक्त कही जाती है। ख्याल में आई इतनी बात? इसी प्रकार प्रकृति में जो निषेक रचना होती है वह गाय की पूंछ के समान होने से उसे प्रकृति गोपुच्छा कहते हैं। अब यदि किसी कारण से उसमें विकार पैदा होकर उसका वह क्रम न रहे तो जितना उसमें विकार का भाग है वह विकृति गोपुच्छा कहलाती है। जितना विकार का भाग है, अभी जो यहाँ नीचे आ गई
तो गुण श्रेणी में खाली विकार रूप वाला,
गुण श्रेणी अन्यत्र भी कहीं दिया जाएगा, वो कहीं भी उसका माल इतना नीचे के थोड़ा छोड़कर यहाँ नीचे आएगा तो मान लेते अभी यहाँ बीच में ही ज्यादा हो जाएगी, कुछ भी ऐसा हो जाए। गुण श्रेणी में तो होती होती है विकार रूप, तो यहाँ बीच में ही अधिक दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? जो एक्स्ट्रा दिया है वो विकृति गोपुच्छा, जो ओरिजिनल है वो प्रकृति गोपुच्छा। ओरिजिनल में उत्कर्षण अपकर्षण वाला द्रव्य भी उसी में ले लेना, संक्रमण उसमें से हुआ तो भी हम उसको ओरिजिनल ही कहेंगे, और एडिशनल जो है, क्योंकि एडिशनल कब कहेंगे? बहुत बड़ी हो जाए तो उसको विकृति गोपुच्छा कहेंगे। मुख्यतः यह विकृति गोपुच्छा स्थिति कांड घात के होने पर अंतिम फाली के पतन से बनती है, मुख्यता की बात ली है। इसलिए यहाँ विकृति गोपुच्छा का लक्षण लिखते हुए यह बताया है कि अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामों से स्थिति कांडकों का घात होते हुए उनकी अंतिम फालियों का जितना द्रव्य जघन्य सत्कर्म के स्वामित्व के समय में प्राप्त होता है उसे विकृति गोपुच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पहले गुणश्रेणी रूप से जो जो कुछ दिया है, यानी विकृति रूप से एक्स्ट्रा एडिशनल दिया है, अब जो अंतिम समय वाला जो मिथ्यात्व है उस समय जो है ओरिजिनल निषेक भी होगा और एडिशनल भी होगा, तो उसमें प्रकृति गोपुच्छा भी और विकृति गोपुच्छा भी, यही बात कहना चाहते हैं। यहाँ यह भी प्रश्न किया कि द्विचरम आदि फालियों के द्रव्य का पतन होने पर उसमें जो द्रव्य जघन्य सत्कर्म के स्वामित्व समय में प्राप्त होता है उसे विकृति गोपुच्छा क्यों नहीं कहा जाता? यानी द्विचरम आदि फालियों के पतन होने पर उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको विकृति गोपुच्छा क्यों नहीं कहते हैं? सो इसका समाधान यह है कि वह द्रव्य अपकर्षण भागहार से प्राप्त होता है, और पहले यह बताया है कि अपकर्षण भागहार से प्राप्त हुए द्रव्य के कारण विकृति नहीं आती, क्योंकि अपकर्षित द्रव्य भी उसी पद्धति से दिया जाता है और वो मूल प्रकृति में कुछ वेरिएशन बहुत नहीं होता, थोड़ा द्रव्य है। अतः इसका अंतर्भाव प्रकृति गोपुच्छा में ही हो जाता है। इस प्रकार विकृति गोपुच्छा के स्वरूप का विचार करके अब इसके प्रमाण का विचार करते हैं। प्रकृति गोपुच्छा तो बता दिए उन्होंने, संचित द्रव्य डेढ़ गुणानिगुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। अब यह देखना है 132 सागर काल के भीतर इसमें से अधस्थिति गलना के द्वारा और पर प्रकृति संक्रमण के द्वारा नष्ट होने के बाद जितना कितना द्रव्य बचता है, तो उसके लिए क्या करना? अतः डेढ़ गुणानिगुणित समय प्रबद्ध में ये ओरिजिनल पूरा संचित द्रव्य है, अपकर्षण उत्कर्षण भागहार का भाग दो, और जो शेष आवे उसमें 132 सागर के भीतर प्राप्त होने वाली नाना गुणानियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि का भाग दो। ऐसा करने से जो लब्ध आवे वह शेष द्रव्य का प्रमाण होता है, पर यह विकृति गोपुच्छा का प्रमाण नहीं है। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए इस शेष बचे हुए द्रव्य में अंतिम फाली का भाग दिया जाए। ऐसा करने से विकृति गोपुच्छा का प्रमाण आता है। यहां इतना विशेष समझना कि विकृति गोपुच्छा का यह स्वरूप और प्रमाण जघन्य सत्कर्म की अपेक्षा कहां है। अब कहते यह विकृति गोपुच्छा प्रकृति गोपुच्छा से असंख्यात गुणी है। फिर शंका, यह किस प्रमाण से जाना? उसका समाधान शास्त्रानुकूल युक्ति से। उसका खुलासा इस प्रकार है, दो शास्त्र सागर काल तक भ्रमण करके दर्शन मोह के क्षपण को प्रारंभ करके क्रम से अधप्रवृत्त करण को बिताकर अपूर्व करण को प्रारंभ करने के प्रथम समय में मिथ्यात्व के द्रव्य को गुण संक्रमण के द्वारा सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में संक्रांत करता है। क्योंकि ऐसा करना स्वाभाविक है, वहां गुण श्रेणी गुण संक्रमण आदि बातें होती है ना, तो पहले समय से गुण संक्रमण भी शुरू हो जाता है। उस समय गुण संक्रम भागहार के द्वारा प्रकृति गोपुच्छा में भाग देने पर लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य पर प्रकृति रूप से संक्रांत होता है। इस प्रकार अपूर्वकरण के प्रथम स्थिति कांड की द्विचरम फाली पर्यंत गुण संक्रम के द्वारा प्रकृति गोपुच्छा का व्यय ही होता है। उसी में से चला जाएगा ना, मिथ्यात्व के जो प्रकृति गोपुच्छा है निषेक है उसमें से संक्रमण होगा। क्योंकि अपकर्षण के द्वारा पतन को प्राप्त होने वाला द्रव्य संक्रमण को प्राप्त होने वाले द्रव्य से असंख्यात गुणाहीन होता है, इसलिए यहाँ उसकी प्रधानता नहीं है। वहाँ मिथ्यात्व के मिथ्यात्व में ही जाने वाले होंगे अपकर्षण होने वाले, परंतु वो कम है, संक्रमित होने वाला ज्यादा है। फिर शंका, संक्रमण को प्राप्त होने वाले द्रव्य से अपकर्षण के द्वारा पतन को प्राप्त हुआ द्रव्य असंख्यात गुणाहीन होता है, यह किस प्रमाण से जाना? उसका समाधान, क्योंकि गुण संक्रम के भागहार से, यानी जिस संख्या का भाग देने पर कितने परमाणु संक्रमित हो गए उसको कहेंगे गुण संक्रमण भागहार। उस भागहार से अपकर्षण उत्कर्षण भागहार असंख्यात गुणा है। भागहार जहां बड़ा वहां संख्या कम, यानी अपकर्षित होने वाली संख्या कम है और संक्रमित होने वाली असंख्यात गुणा है। और यह असिद्ध नहीं है, क्योंकि आगे कहे जाने वाले अल्प बहुत्व से अपकर्षण उत्कर्षण भागहार का असंख्यात गुणापना सिद्ध है। यहाँ प्रथम स्थिति कांडक की के ऊपर गुणहानियों की बदले गुण नानियों की हो गए। हाँ, 142 पेज पर पहले पैराग्राफ को नीचे से छठी लाइन, 132 सागर के भीतर प्राप्त होने वाली नाना गुणहानि, ये नानी हो गए। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पहले क्या बताया उन्होंने, विकृति गोपुच्छा यानी जो बहुत अधिक मात्रा में द्रव्य दिया जाता है उसको विकृति गोपुच्छा कहेंगे। यहाँ प्रथम स्थिति कांडक की अंतिम फाली का पतन होते समय अधिकृत गोपुच्छा में, अधिकृत गोपुच्छा ने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है पहले बनी हुई है उसमें जो द्रव्य पतित होता है उसे विकृति गोपुच्छा कहते हैं। प्रकृति गोपुच्छा में ही आ मिला है उसको विकृति गोपुच्छा कहा, क्योंकि अपकर्षण उत्कर्षण के बिना स्थिति कांडक के द्वारा आए हुए द्रव्य का ही यहाँ ग्रहण किया है। उस विकृति गोपुच्छा का प्रमाण अनुगम करते हैं वह इस प्रकार है। एकेंद्रिय संबंधी एक समय प्रबद्ध को डेढ़ गुणानी से गुणा करके स्थापित करो, वहां का संचित द्रव्य आया। उसके नीचे दो छासर सागर के भीतर की नाना गुणानी शलाओं का विरलन करके और उन विरलन अंकों को द्विगुणित करके परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो, अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते ना उसको, उसे अंतर्मूल से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागहार से गुणा करके स्थापित करो। फिर ऊपर की अंत कोड़ाकुड़ी के अंदर की नाना गुणानी शलाओं का विरलन करके और उस विरलित राशि को द्विगुणित करके परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो, एक कम उसमें पल्ले के असंख्यात भाग मात्र स्थिति कांडकों के भीतर की नाना गुणहानी शलाकाओं की एक कम अन्योन्य भस्त राशि से भाग दो, जो लब्ध आवे उसे डेढ़ गुणहानी को गुणा करके पूर्व में स्थापित भागहार के समीप में इसको स्थापित करने पर प्रथम स्थिति कांडक से उत्पन्न हुई विकृति गोपुच्छा होती है। कितनी गोपुच्छा हुई विकृति गोपुच्छा उसका प्रमाण बताना है। यह जघन्य विकृत गोपुच्छा प्रकृति गोपुच्छा से गुण संक्रमण के द्वारा प्रकृति रूप से संक्रमण करने वाले द्रव्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि गुण संक्रमण भागहार से अन्योन्या न्यास से उत्पन्न हुई राशि असंख्यात गुणी होती है। अब दूसरे स्थिति कांडक का पतन होते समय जो विकृति गोपुच्छा उत्पन्न होती है, उत्पन्न करो बना पहले बात की तो पहले स्थिति कांडक का अंतिम फल ले लो। अब ये दूसरा स्थिति कांडक, दूसरे स्थिति कांडक का पतन होते समय जो विकृति गोपुच्छा उत्पन्न होती है उसका प्रमाण लाने के लिए पहले की ही तरह भाज्य भाजक राशियों की स्थापना करना चाहिए। इतना विशेष है कि अंत कोड़ाकोड़ी के भीतर की नाना गुणहानी शलाकाओं में से प्रत्येक को दूना करके परस्पर में गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो उसमें एक कम करके जो राशि आवे उससे दो स्थिति कांडकों के भीतर की नाना गुणानी शलाकाओं का विरलन करके और उनमें से प्रत्येक को दूना करके परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो उसमें से एक कम राशि को भागहार स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार इस क्रम से 3, 4, 5, 6, 7 आदि संख्यात हजार स्थिति कांडकों का अपूर्वकरण काल में पतन होने पर विकृति गोपुच्छा उत्पन्न कर लेनी चाहिए। एक बार होता है तो विकृति गोपुच्छा, फिर दोबारा करते तो फिर तिबारा करते तो ये विकृति गोपुच्छा होती रहती है।
तो ये द्रव्य की टोटल द्रव्य की बात है जो विकृत रूप से स्थापित होता है,
विकृत रूप से कितने निषेक बने या कितने निषेकों में वो विकृति बनी उसको कहेंगे। अब क्या होगा, फिर अपूर्व करण को समाप्त करके यहाँ जितने बार स्थिति कांड घात होता है हर एक के अंतिम फाली के पतन के समय वो विकृति गोपुच्छा होती रहती है, यानी उसी में माल दिया जाएगा और एक्स्ट्रा या अन्य भी विकृति गोपुच्छा होगी। अब अपूर्व करण को समाप्त करके अनिवृत्ति करण का प्रारंभ करने पर उसके अंदर संख्यात हजार स्थिति कांडकों का पतन होने पर स्थिति सत्कर्म असंगी जीव के स्थिति बंध के समान होता है। यह स्थिति कांड घात चल ही रहा है, अब ये जो कितना अंत कोड़ा कोड़ी से घटता 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 चला जा रहा है, अब कितना हो जाएगा, हजार सागर जितना होगा, स्थिति जो है हजार सागर जितनी घट जाएगी। बंध की बात चल रही है, असंगी का जितना बंध है उतना इसका सत्व होता है, यही बात है, हजार सागर जितनी हो जाती है, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है। इस प्रकार इस क्रम से संख्यात हजार स्थिति कांडकों के जाने पर स्थिति सत्कर्म और स्थिति कांड घात होते ही रहेंगे तो स्थिति घटती ही चली जाएगी। पहले कितना था, असंगी के बंध जितना, असंगी के सत्व जितना नहीं कहा, क्योंकि असंगी में सत्व तो जो संगी में से आया है उसका सत्व भी अधिक देखा जाएगा, तो असंगी का जितना बंध है हजार सागर उसका इतना सत्व हो जाता है, जिसके एक शपक वाली की बात चल रही है अनिवृत्तिकरण। और आगे बढ़ने पर क्या होता है, उसका शरीर में चौइंद्रिय तेइंद्रिय द्वेन्द्रिय और एकेन्द्रिय के स्थिति बंध के समान होता है, शपक श्रेणी में वो सागर जितना सत्ता में पड़ा कर्म हो जाता है। फिर उससे आगे संख्यात हजार स्थिति कांडकों का पतन होने पर बाद में पल्योपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म होता है। पहले तो सागरों का था ना, फिर एक सागर जितना हुआ और भी स्थिति कांड घात होते गए, फिर पल्य प्रमाण हो जाएगा। अब यहाँ की विकृति गोपुच्छा का प्रमाण लाने पर भाज्य और भागहार की स्थापना का क्रम पहले की ही तरह होता है, इतना विशेष है कि अंत कोड़ाकोड़ी के अंदर की नाना गुणहानी शलाकाओं का विरलन करके प्रत्येक को दुना करके परस्पर गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो एक कम उसके भागहार रूप से पल्योपम कम अंत कोड़ाकोड़ी के अंदर की गुणहानी शलाकाओं का दुना करके परस्पर में गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो उसमें एक कम भागहार राशि करनी चाहिए। ये क्या बताना चाहते हैं,
अन्योन्य अभ्यास राशि टोटल जितना कांडक से कम हो गया है उसकी अन्य
अंत कोड़ाकोड़ी में जितने नाना गुणानी है
और अभी ये पल्योपम के ऊपर जितनी अन्योन्य अभ्यास राशि है वो दोनों का भागा करते हैं ना,
पल्योपम अंत कोड़ाकोड़ी में से पल्योपम माइनस करना, जैसे वहाँ फिर हमने किया था ना अंत कोड़ाकोड़ी में से 132 माइनस किए थे, अभी अंत कोड़ाकोड़ी में से पल्योपम माइनस किया और उसकी जितने नाना गुणानी शलाका है वो एक में गुणा करने से वहाँ जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि उत्पन्न होगी उसमें एक कम भागहार राशि करनी चाहिए। भागहार राशि में अन्योन्य अभ्यस्त राशि माइनस वन लिया, ऐसा स्थापित करने पर उस स्थान की विकृति गोपुच्छा आती है। यह विकृति गोपुच्छा भी गुण संक्रम के द्वारा पर प्रकृति रूप से संक्रमण करने वाले द्रव्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती है। यहाँ जो गुण संक्रमण हो रहा है मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व बन रहा है उसके असंख्यातवे भाग मात्र ये हो जाती है विकृति गोपुच्छा, क्योंकि गुण संक्रम भागार की अपेक्षा पल्योपम के भीतर की नाना गुणानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। अब और आगे स्थिति कांड घात चल ही रहे, पहले तो अंत कोड़ा कोड़ी था, स्थिति घटते घटते हजार सागर, फिर सौ सागर, पचास सागर, पच्चीस सागर, एक सागर, अभी और भी कांड घात हो रहे हैं। अब क्या होगा? अब पल्योपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म के शेष रहने पर घटते घटते पल्ले प्रमाण हुआ, जब पल्ले प्रमाण स्थिति रहेगी बाद में, उसमें से स्थिति कांडक को ग्रहण करते हुए स्थिति कांडक के लिए उस स्थिति के संख्यात बहुभाग को ग्रहण करता है।
ये जो लास्ट वाला कांडक है
नहीं, देखो अभी स्थिति कितनी बची है?
पल्ले,
एक पल्ले
बहुभाग निकल गया।
मोहिनी की बात करनी है, नहीं अन्य कर्मों की बात नहीं है, सपना कर रहा है। हाँ मिथ्या, तो अब पल्लोपम प्रमाण स्थिति बाकी है, उसमें से स्थिति कांडक को ग्रहण करते हुए स्थिति कांडक के लिए उस स्थिति के संख्यात बहुभाग को ग्रहण करता है। अभी क्या हो रहा था? एक एक कांडक का प्रमाण कितना बड़ा था?
असंख्यात बहुभाग, असंख्यात स्थिति
के, स्थिति का जो कोई हम कहते ना, एक कांडक की कितनी होगी, पल्ले का संख्यात वा या असंख्यात वा भाग जितना कांडक रूप से होता था। अब पल्ले प्रमाण स्थिति है, अब इसके आगे क्या होगा? वो बहुभाग कांडक में नष्ट हो जाएगा और एक भाग रहेगा, यही कहते हैं यहाँ पर। अब यहाँ तो पहले में पहले संख्यात बहुभाग को ग्रहण किया, संख्यात वा भाग शेष रहेगा और संख्यात बहुभाग चला जाएगा। तो कांडक के लिए उसका एक कांडक का प्रमाण कितना है? संख्यात बहुभाग, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है। इस प्रकार प्रकर हुआ शेष शेष स्थिति के संख्यात बहुभाग को, यानी संख्यात बहुभाग चला गया, अभी संख्यात वा रह गया। अब जितना रह गया उसका फिर संख्यात बहुभाग कांडक रूप से नष्ट करेंगे, जो बचेगा फिर उसका संख्यात बहुभाग। तो इसलिए कहते इस प्रकार शेष शेष स्थिति के संख्यात बहुभाग को ग्रहण करता हुआ दुरापकृष्टि स्थिति सत्कर्म के प्राप्त होने तक जाता है, यानी पल्ले के बाद भी पल्ले का संख्यात वा भाग इतना नष्ट होते होते अभी कितनी बची, तो दुरापकृष्टि नाम की स्थिति बच गई। यहाँ पर भी पहले की तरह ही विकृति गोपुच्छा का प्रमाण लाना चाहिए। इतना विशेष है, अंत कोड़ा कोड़ी के अभ्यंतरवर्ती नाना गुन्हानी शलाकाओं की रूपोन अन्योन्य अभ्यस्त राशि, रूपों ने एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि की भागार रूप से दुरापकृष्टि से हीन अंत कोड़ा कोड़ी के अभ्यंतरवर्ती नाना गुन्हानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि में एक कम राशि की स्थापना करनी चाहिए। ये नई अन्योन्य अभ्यस्त राशि की यहाँ स्थापना करनी, इस प्रकार स्थापित करने पर उस स्थान की विकृति गोपुच्छा होती है। यह विकृति गोपुच्छा भी प्रकृति गोपुच्छा से गुण संक्रम भागार के द्वारा परप्रकृति रूप से संक्रमण करने वाले द्रव्य के असंख्यात भाग प्रमाण है। क्योंकि गुण संक्रमण भागार से पल्योपम के संख्यात भाग प्रमाण दुरापकृष्टि स्थिति के अभ्यंतरवर्ती नाना गुणानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। तो ये भागार बड़ा है, हाँ, तो द्रव्य कम होगा और गुण संक्रमण होने वाला द्रव्य बहुत ज्यादा होगा। यह राशि गुण संक्रम भागार से असंख्यात गुणी है, ये कल पढ़ेंगे हम, इसको यही रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लो कालो सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। लक्ष्मी बेन।